राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 27 अक्टूबर 1993 को दोपहर लगभग 3 बजे वृंदावन में हुआ। राम
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 पूछते हैं कि भाई मेरे तो गृह है गोपाल दूसरा न कोई, ये कौन सा साधन है? भाई हम ज्यादा जानते नहीं है, हम तो बहुत कम जानते हैं। तो मेरे तो गृह है गोपाल दूसरा न कोई, ये शरणागति का साधन मालूम होता है। जिसमें मेरे तो गए थे गोपाल ये शरणागति है और दूसरा न कोई ये उसकी दृढ़ता है। मेरे तो गिरधर गोपाल इसमें तो कई आदमी सहमत हो जाएंगे, पर दूसरा न कोई इसमें बहुत कम आदमी पास होंगे। और चीजों का भी सहारा लिया हुआ है, केवल भगवान का ही सहारा नहीं है, इस वास्ते उसकी सिद्धि नहीं होती। क्योंकि रामायण में आया है कि एक मान करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की। ये भगवान की एक मान है, मन भगवान की एक आदत पड़ी हुई है, एक स्वभाव है, मान पड़ गई, स्वभाव हो गया, आदत हो गई, ऐसा ही। तो ये भगवान का स्वभाव है। तो दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है। जब तक दूसरा अपना मालूम होता है तब तक वास्तव में मेरा गिरधर गोपाल ये सिद्धि नहीं होती, दृढ़ता नहीं होती है, कमी रहती है। और आसरो छोड़ आसरो लियो कुंवर कन्हाई को, दूसरा आश्रय छोड़ करके एक भगवान का ही आश्रय लिया है तो वो ठीक है। तो दूसरा मेरा कोई नहीं है, इसकी क्या पहचान है? कि पूछा है तो पहचान ये है, कोई भी याद आता है क्या? तो मन में कोई याद आता है, किसी का दर्शन है, किसी की बात है, वो अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, तो उसका स्नेह है मन में। ये बिल्कुल न रहे, कोई याद ही न आवे, परवाह ही न हो, ऐसा होना चाहिए। बार बार याद आती है तो उसका सहारा लिया हुआ है मन में, वो सारा परमात्मा की प्राप्ति में बाधा देता है, अनन्य भाव नहीं होता। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यश तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। अनन्या मां अन्य कोई जिसके सहारा नहीं, अन्य कोई अपना नहीं है, ऐसे मेरा चिंतन कर, अनन्य होकर चिंतन करे तो अनन्य होकर चिंतन करते हैं तो वो चिंतन बड़ा विचित्र होता है। अन्य का सहारा रखते हुए चिंतन करते हैं वो अनन्य चिंतन नहीं होता, अन्य चिंतन साथ में रहता है। वैष्णव लोग कहते हैं ये अनाश्रय हो गया, मन किसी दूसरे का चिंतन हो तो अनाश्रय हो गया। व्यवहार में ऐसी बात भी कहते हैं, जय श्री कृष्ण कह दिया तो जय श्री राम कहने से भी अनाश्रय हो गया, तो ये अनाश्रय नहीं होता है। वो भी एक निष्ठा बड़ी अच्छी है, आदरणीय है, पर अन्य आश्रय कब होता है कि जब धन अच्छा लगता है, मान अच्छा लगता है, बड़ाई अच्छी लगती है, शरीर का आराम अच्छा लगता है, अनुकूलता अच्छी लगती है, ये अन्य का आश्रय है, ये और का आश्रय हुआ। जय श्री कृष्ण कह दिया, जय श्री राम कह दिया तो उसमें इतनी बात नहीं है, क्यों है ये कहीं। मनुष्य जो है उसकी अपनी स्थिति कहाँ है, एक तरफ तो परमात्मा है, एक तरफ संसार है, उसके बीच में स्थिति है। तो बीच में स्थिति होकर ये भगवान की तरफ ही केवल लग जाए तो नाशवान की तरफ वृत्ति न रहे, इसकी आवश्यकता है। अविनाशी परमात्मा है, राम है, कृष्ण है, वासुदेव, हरि, दामोदर, माधव, मुकुंद आदि के नाम है, विष्णु रूप है, कृष्ण रूप है, राम रूप है, ऐसे भगवान के मत्स्य कच्छ वराह कई रूप है, अनेक रूप है। इन रूपों में एक रूप की तरफ लगना अच्छा है, पर सभी रूप भी भगवान के हैं तो वो विभाग अनाश्रय नहीं है, पर अन्याश्रय नहीं है। ये जो जड़ विभाग है, अपरा प्रकृति है, नाशवान है, इसकी तरफ जो वृत्ति है ये वृत्ति अनाश्रय है। मान अच्छा लगता है, बड़ाई अच्छी लगती है, शरीर का आराम अच्छा लगता है, अनुकूलता रहे तो वो अच्छी लगती है, प्रतिकूलता बुरी लगती है, तो ये अन्य का आश्रय है। इस आश्रय का त्याग करना साधक के लिए बड़ा बड़ाई उचित है, बड़ाई आवश्यक है। इसमें दो बात है, एक ज्ञान हो जाए तो ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान हो जाए तो ज्ञान होना दोष ही नहीं है। इंद्रियों के सामने कोई भी चीज आती है तो उसका ज्ञान तो होता है, जैसे नेत्रों से देखा तो सफेद सफेद ही दिखेगा, काला काला ही दिखेगा, नीला हरा लाल वो ही दिखेगा, तो लाल हरा दिख जाना दोष नहीं है। किंतु इसमें किसी में भी आकर्षण होता है, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, ये दोष आता है। मनुष्य का ज्ञान हो जाए, स्त्री है, ये पुरुष है, ये पुरुष है, ये हमारी जाति के है, हमारे समुदाय के है, हमारे ये नजदीक लगते हैं, ये दूर है, ये और है, ऐसा जो भाव है ये भाव आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। आदर करे निरादर करे, इसका ज्ञान हो जाए, इन्होंने मेरा आदर किया, इन्होंने मेरा निरादर कर दिया, तो ज्ञान मात्र दोषी नहीं है। किंतु आदर करने वाला अच्छा लगता है, निरादर करने वाला बुरा लगता है। कोई कहते आइए बैठिए यहाँ पर, कोई कहते कहाँ 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 यहाँ से कहाँ गए तुम यहाँ, ऐसे दोनों बातों का ज्ञान और दोषी नहीं है। पर नाओ बैठो आदर करे वो प्यारा लगता है, वो दुत्कार करे तिरस्कार करे वो बुरा लगता है। अच्छा और बुरा लगना ये गलती की बात है। इन दोनों का विश्लेषण करने में थोड़ा सा जोर पड़ता है और भेद समझने में कठिनता पड़ती है। मैं अच्छी बात और मंदी बात कहता हूँ, कठिनता सुगमता कहता हूँ, उसका अर्थ है कि मेरे ऐसा असर पड़ा है, मैंने इसे देखा है। तो अच्छा मंदा लगना है ये उन वस्तु के अधीन है, जैसी वस्तु हो वैसा ज्ञान होता है, तो यह दोषी नहीं है। उसमें प्रियता अप्रियता होती है, ये दोषी है। इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न भस्मागत से तो जिससे परिपंथे न हो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित है, मानो अनुकूलता प्रतिकूल का को लेकर के ही होता है। अनुकूलता लेकर के प्रियता होती है, प्रतिकूलता को लेकर के द्वेष होता है, तो ये व्यवस्थित है। मानो कोई वस्तु सदा ही प्यारी लगे ऐसा नहीं है, कोई वस्तु सदा ही अप्रिय लगे ऐसा नहीं है। तो प्रिय लगता है ये राग मालूम होता है, और बुरा मालूम होता है ये द्वेष मालूम होता है। परंतु प्रिय लगना और अप्रिय लगना इसका ज्ञान दोषी नहीं है, राग और द्वेष दोषी है। तो ये प्रिय लगा अच्छा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा का ज्ञान हुआ, और ये बुरा लगा तो बुरे का ज्ञान हुआ। ज्ञान दोषी नहीं होता, कहीं हो ज्ञान कैसा ही हो, ज्ञान दोषी नहीं होता है। अपने मन का लगाव होता है वो दोषी होता है। मानो अनुकूलता अच्छे लगे, मन खींचे, उसकी याद आवे, वो प्रिय लगे तो याद आ गए, प्रिय लगे वो प्रियता दोषी है। अनुकूलता है ये, प्रतिकूलता है ये, जो ज्ञान है इस ज्ञान में भी प्रिय प्रियता है। परंतु ये प्रिय प्रियता अपना अगर मन चिपकता नहीं है, उसमें रस नहीं रहता है, तो वो इतना दोष नहीं है। वो अनुकूलता में रस रहता है, मानो आकर्षण होता है, प्रतिकूलता में विकर्षण होता है, मानो अलग हो जाए, तो अलग होना भी दोष नहीं है। परंतु उसमें घृणा हो जाए, द्वेष हो जाए, ये हो जाए, ये खराब होती बात। तो ये ना हो, क्रिया में दो पदार्थों में, क्रियाओं में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में ठीक बैठक का ज्ञान तो होता है, अशुभ ही होगा। गर्म हवा है वो गर्मी के दिनों में अच्छी नहीं लगती, ठंडी के दिनों में अच्छी लगती है। ठंडी हवा है वो गर्मी के दिनों में बड़ी अच्छी लगती है, शीतकाल में ठंडी हवा अच्छी नहीं लगती। तो अच्छा लगना बुरा लगना ये तो त्वचा का काम है, पर वो ठंडी जगह बड़ा अच्छा है, रस देते हैं, ये उठ फंस जाते हैं। ठंडी पड़ी है, गर्म गर्म हवा लगी, गर्म मकान मिले तो बड़ा अच्छा लगा, राजी हो गए। उसमें राजी और नाराज होते ये दोषी होता। इन दोनों का ये विश्लेषण मेरे समझ में नहीं आया था कई दिन तक, फिर भी अब मैं ठेका नहीं लेता हूँ, मेरे समझ में आ गया है ऐसा नहीं लेता हूँ। परंतु ये है बात सूक्ष्म समझने की, मैंने समझने की चेष्टा की, जल्दी समझ में नहीं आई है, इस बात आपके सामने रखता हूँ, ये चीज ऐसी है। नहीं तो ना प्रियेत प्रियम प्राप्य, प्रियम प्राप्य हो गया पर न प्रियेत, प्रियसी का बाकी रहा भाई, प्राप्य प्रियम अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत, तो अप्रिय प्राप्त हुए तो अप्रियपना हो गया, तो उद्विग्न हो गया, तो ये वास्तव में नहीं है। इसके दोषों विश्लेषण करने में, व्याख्यान करने में भी मेरे समझ में नहीं आई थी बात, तो व्याख्यान तो मैं कर देता हूँ, परंतु तो जीवन में आवता है बढ़िया व्याख्या करने में तो सुनता है, क्योंकि परोपदेश बेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति। दूसरे को जब उपदेश देते हैं तो उसमें पंडिताई पूरी आ जाती है, पर विस्मरन्ति है शिष्टत्वम स्वकार्ये समुपस्थिते, अपना काम पड़ता है तब वहाँ ठीक तरह से विवेचन करना कठिन होता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरिते नरन घनेरे, तो दूसरों को उपदेश देते समय भी ये बात मेरे समझ में नहीं आई थी कि कैसे कही जाए भाई, ना प्रेरित प्रियम प्राप्य, तो प्रिय प्राप्य प्रियता हुई तो प्रेरित क्या और होता, वही तो होता है। नोद्विजय प्राप्य चा प्रियम अप्रिय प्राप्त उद्दूर न हो तो अप्रिय प्राप्त होता, अप्रियता हुई ये उद्दूर हो गया, ऐसे मेरे मन में रही बात। अब मैं समझना था, मेरे समझ में नहीं, कोई प्रश्न तक ठीक तरह समझ में नहीं आई, क्या कहने में, विवेचन करने में, तो विवेचन करने में तो समझ में आती है मेरे, ये बातें दोनों विवेचन करने में तो समझ में आती है, ये तो आने लग गई, परंतु आचरण में आवे तब है बढ़िया बात एकदम, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के हर विषोग न हो। ये साधक के लिए बहुत ही काम की बात है, असली बात है, मेरे काम पड़ा है इस बात कहता हूं। तो ये निगरानी रखे अपने अपने व्यवहार में, देखे इनको लेकर हमारे क्या क्या मन में बातें पैदा होती है, तो बड़ी करनी बात है ये, साफ विलक्षण एकदम इनसे अलग हो जाना, न प्रदर्शित प्रेम प्राप्ति। तो प्रिय का ज्ञान हुआ, प्रिय दिख जाना है ये दोषी नहीं हुआ है, और अप्रिय का ज्ञान हुआ है ये दोषी नहीं है, परंतु प्रियता में मन खिंचता है लगता है ये दोष है, अप्रियता से मन हटता है अच्छा लगता है बुरा लगता है ये दोष है। तो इस दोषों से आदमी को बचना चाहिए। तो मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरा न कोई, तो दूसरा कोई कौन नहीं है क्या है, इसकी पहचान क्या होगी कि जो दूसरा मिलता है तो जो गुरुदेव गोपाल अच्छे लगते हैं क्यों अच्छा लगता नहीं। तो ये भगवान में तो हो जाए तो थोड़े दोष है ये, वास्तव में तो क्षमता ऐसी बात है, चाहे भगवान का रूप हो चाहे संसार का रूप हो, किसी भी फर्क हमारे क्यों का आता है, क्योंकि गीता ने कहा है कि वासुदेव सर्वम, तो सर्वम वासुदेव है, तो भी सभी ऐसे लगना चाहिए जैसे भगवान लगे, ऐसे दूसरा लगना चाहिए कि सब वासुदेव है, परंतु हमारे को दूसरा ऐसा अच्छा नहीं लगता है, तो इतनी हमारे में कमी है, ये हमारे में कमी है, तो इस कमी को दूर करना साधक का काम है। साधक को चाहिए कि अपनी जहां जहां कमी दी गई उसको दूर करता रहे, तो फिर कमियां सब निकल जाती है, सिद्ध हो जाता है। परंतु इस तरफ ध्यान कम होता है, नाम जप का होता है, इतना जप कर लिया, इतना पाठ कर लिया, इतनी कथा सुन ली, इतने भगवान के चरित्र संतों के चरित्र पढ़ लिए, ये हो गया, तो ये तो सुगम है काम, ये भी हरेक आदमी के लिए कठिन है, परंतु साधन करना चाहते हैं, साधन की दृष्टि को लेकर वृंदावन वास करते हैं, उनके लिए ये तो सुगम है बात, इतना पाठ कर लिया, इतना पूजन कर लिया, इतना चरित्र पढ़ लिया, भगवान का चरित्र पढ़ लिया, भक्तों का चरित्र पढ़ लिया, भगवान लीला देख ली, भगवान के दर्शन कर लिए, मंदिर में आया, ये बात तो सुगम हो जाती है। परंतु उनमें भीतर में राग और द्वेष जो पक्के रहते हैं उसे मिट जाए तब शांति मिलती है, असली तत्व तब पता लगता है, सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में सम होता है तब स्वस्थ स्व में स्थित होता है, और सुख दुख में स्थित होता है तब तक प्रकृति में स्थित है, स्व में स्थित नहीं हुआ है, क्योंकि पुरुष सुख दुख खाना भोक्तृत्व हेतु चले, भोक्तापन में सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु है, क्योंकि पुरुष है वही तो भोक्ता बनता है, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति, कार्यकरण करने में तो प्रकृति हेतु है पर भोगने में पुरुष हेतु है, ये बात खुद समझनी थोड़ा सा ध्यान देकर के। जैसे हम मोटर में चढ़े और मोटर चलती है, वो मोटर चलती है उससे किसी के चोट लग गई, कोई अंगहीन हो, कोई मर गया मोटर के द्वारा, मनुष्य की किसी हत्या हो गई, तो हत्या हो गई जिसकी, उसको ड्राइवर ने सुना ही नहीं और चकोसी पीछा गया हो, तो मोटर ड्राइवर ने नहीं सुना, परंतु उसका दंड होगा, वो मोटर को छुएगा ही नहीं, वो ड्राइवर को होगा, दोनों का फर्क है ना, जिसको मारा उस मरने वाले को ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, कोई लाठी चलाई नहीं, तलवार चलाई नहीं, गला घोंटा नहीं, तो मोटर से मर गया, तो मोटर से मर गया, मोटर चलाने वाला कौन था, ड्राइवर, ड्राइवर को एक दोष लगे तो एक ड्राइवर पास में बैठा है, दोनों ड्राइवर पास, एक तो मोटर एक ऐसे ही बैठा है, तो ड्राइवर अगर पकड़ा जाए तो पास में बैठा पकड़ा नहीं जाएगा, ड्राइवर तय हुआ भी ड्राइवर को दंड दिया जाए, तो उस ड्राइवर को दंड नहीं दिया जाता, जिसने मोटर चलाई उसको दंड दिया जाता है। तो दंड भोगने में उनका जो श्रेय भोगने में दंड पुरुष है तो पुरुष भोगता है मोटर नहीं, इस तरह से क्रिया करने में जड़ता की मुख्यता है और उसके फल भोगने में चेतन की मुख्यता है, मोटर की मुख्यता है, साथ चलाता है तो मोटर मारती है, नहीं चला तो कैसे मारे, इस वास्ते मुख्यता मोटर की है, परंतु उसमें खास मुख्यता ड्राइवर की है, मोटर तो जड़ है चलती है नहीं, तो चलाने की क्रिया में मुख्यता ड्राइवर की है, इस वास्ते उसका श्रेय और अश्रेय दोनों भोगना ड्राइवर को भोगना पड़ता है। तो शरीर से आप किसी को दंड देते हो तो शरीर को नहीं खुद को दंड भोगना पड़ेगा, शरीर तो यह मर गया, ये लोगों ने जला दिया, वो नरकों में गया स्वर्ग में गया, नरकों में कौन गया, वो स्वयं गया, शरीर के द्वारा दूसरे को मारा, तलवार से दूसरे को काट लिया, तो तलवार वो शरीर वो हाथ वो तो वही रह गया, परंतु चलाने वाला वो जा गया, वो नरकों में जाएगा, वह दुख भोगेगा। तो क्रिया की करने क्रिया के करने में तो जड़ विभाग की मुख्यता है, परंतु उसका संचालन करने में मुख्यता चेतन की है, तो चेतन उसका दंड का भागी होगा, स्वयं वे हाथ नहीं वे पैर नहीं वो शरीर नहीं, नार की जीव का शरीर भी दूसरा मिलता है, ये शरीर नहीं रहता, तो शरीर के द्वारा क्रिया हुई तो शरीर भोगेगा नहीं है, वो दूसरा शरीर मतलब उसमें भोगेगा, भोगने का शरीर अलग होता है तो वो भोगना पड़ता है। तो पुरुष सुख दुख का नाम भोगतृत्व हेतु रुचते, पुरुष है वो सुख दुखों के भोगने में हेतु होता है। अब कौन सा पुरुष हेतु होता है, तो कहते पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित रहने वाला भोगता बनता है, कर्ता भी प्रकृति में स्थित रहकर बनता है, परंतु भगवान के कहने की एक बड़ी विचित्र शैली है, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते है, प्रकृति में स्थित भोगता है, तो प्रकृति में स्थित कहां स्थित, तो शरीर में है, कि शरीर में स्थित हुआ तो प्रकृति मात्र के साथ में उसकी स्थिति हो गई। जैसे आप विवाह करते हैं तो एक लड़की के साथ आप संबंध जोड़ते हैं, तो लड़की के साथ संबंध जोड़ते ही लड़की के माँ बाप भाई संबंधी जितने उसके साथ सबके साथ आपका संबंध हो जाता है, और लड़की के साथ का संबंध छूट जाए सर्वदा जयराम जी की सब संबंध छूट जाते हैं, तो लड़की के साथ संबंध का अर्थ हुआ शरीर के साथ संबंध, और प्रकृति का संबंध क्या हुआ संसार मात्र के साथ संबंध। तो पुरुष है प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति से कहा भगवान ने, तो परिस्थिति कहने का मतलब है शरीर स्थित होना, और जो शरीर में स्थित नहीं है अपने स्वरूप में स्थित है, तो वहां पर विचित्र गई भगवान ने बात कि शरीर स्थित कौन थे न करो तीर न लिप्यते, शरीर में स्थित हुआ भी न करता है न लिप्त होता है, शरीर में स्थित होता हुआ भी उल्टी बात कही है, कहनी चाहिए प्रकृति में स्थित होना करो तीन लिप्य थे, अरे शरीर तो ही भोगते ये कहना चाहिए, भगवान ने उल्टा कहा शरीर में स्थित होता है शरीर स्थो भी ऐसे न अंकर दो भाव बुद्धि ऐसे न लिप्य थे, हतो भी से मान लो का न अंत न निपद थे, जिसके अहंकृत भाव नहीं है बुद्धि लेप नहीं है तो सबको मार दे तो न मारता है न बंधता है, शरीर में रहता हो भी अहंकृत भाव नहीं है स्वार्थ भाव नहीं, तो अहंकृत भाव और स्वार्थ भाव ये बांधने वाली चीजें हैं, खास की चीजें हैं, तो ये चीजें बांधती है। तो ऐसा जिसके भाव नहीं है देह का अभिमान नहीं है और स्वार्थ बुद्धि नहीं है तो वो जरूर बनता नहीं बिल्कुल ही, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है, वो प्रकृति में स्थित नहीं है शरीर में स्थित नहीं है। तो पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु कौन सा पुरुष प्रकृति स्थित हो, तो शरीर में सिद्ध हो गया तो प्रकृति मात्र में सिद्ध हो गया, ये समझो आप। ये ध्यान धराने के लिए उल्टा कहा भगवान ने, अब शरीर स्थो भी कौन थे, ये शरीर स्थो न कोने न कर न लिख, ये 13वां अध्याय के 31, 32, 33 दो तीन श्लोक है, तो उसमें यदा भूत प्रतिभाव एक स्तम अनुपस्थिति तथा विस्तार ब्रह्मपदे तदा क्या है अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्यय शरीर स्थो भी कौन थे न करो तो मिली तभी कृषि मिली बात बताई। तो जो जो यदा भूत प्रतिभाव एक स्तम अनुपस्थिति तथैव विस्तार ब्रह्म संपदे तदा, ब्रह्म क्यों हो जाता है अनादि है निर्गुण है ये स्वरूप से इस बार ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तो शरीर स्थो भी मनुष्य हो तो शरीर में स्थित दिखता है, शरीर में है स्थित जीवन मुक्ति के द्वारा भी क्रिया होती है सब तरह की, तो शरीर में स्थित दिखता है और है भी पर सर्वृत तो नहीं लिपे थे, तो न करोते न लिपते के व्याख्या की दो श्लोकों में, अगर 32-33 श्लोकों में न करोते न लिपते की यथाकाश अस्तित्व नित्यम वायु यथा अच्छा यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते, सर्वगत आकाश है वो सर्वगत है तो वो लिप्त नहीं होता किसी के साथ, आकाश का लिप नहीं होता, तो सर्वगत सूक्ष्म सूक्ष्म होने के कारण से लिप्तता उसमें निर्लिप रहता है, तो निर्लिप्त रहता है ऐसे निर्लिप्त रहे शरीर में रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए ऐसे लिप्त रहे आकाश में स्थित रहता है सर्वगत सूक्ष्म आकाश हम नो लिप्यते शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिप्यते, ओ ये था यथा प्रकाश का कृत्रिम लोक में मम रवि, जैसे सूर्य है तो सबको प्रकाशित करता है प्रकाश ही ज्ञान देता है जिस प्रकाश में सब क्रियाएं होती है, कृत्रिम लोगों में रवि ऐसे क्षेत्रम क्षेत्रीय तथा प्रकाश रहती सर्व क्षेत्र को प्रकाशित करता है, तो प्रकाशित करना और लिप्त न रहना तो क्रिया करना और प्रकाश करना दो बात हुई, तो पूरे 30वें श्लोक ने करोती न करोती न लिप्यते बताया, तो न करोती में दृष्टांत दिया सूरज का और न लिप्यते में दृष्टांत दिया आकाश का, ये दोनों विषय खोला आपसे, तो प्रकाश सूरज करता है परंतु प्रकाश दंड का भागी सूरज नहीं होता, एक वेद का पाठ करता है तो वेद का पाठ सूर्य के प्रकाश में करता है और एक शिकार खेलता है वो सूर्य के प्रकाश में ही हरिण को मार रहा है, तो प्रकाश के बिना न तो वेद पाठ होता न हरिण मारा जाता, प्रकाश तो साथ प्रकाश के बिना होता नहीं, परंतु क्या सूर्य को पुण्य होगा वेद पाठ करने से और क्या हरिण के मारने से पाप लग जाएगा, क्यों नहीं लगता, वो तो प्रकाश से करता है केवल ही, तो केवल प्रकाशित मात्र करने से वो बंधता नहीं है, ऐसे लिप्त है क्या है प्रकाशित करना का आभा हुआ ये सिद्धांकृत भाव, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, सूर्य ऐसा अहंकार नहीं करता कि इसको मैं वेद पढ़ा दूं, इसको वेद पढ़ा दूं वेद की शिक्षा दे दूं और मैं कहता हूं तू वेद पढ़ ऐसा संबंध हो तो बन जाए, तो मैं ऐसा कहता नहीं लिप्त होता नहीं करता नहीं मैं, और वो लिप्त होते मैं आकाश जैसे रहता है तो आकाश रहता वो लिप्त नहीं होता, तो इससे न अहंकृत भाव बुद्धि ऐसे न लिप्य थे, तो बुद्धि का लिप्त होता है लिप्त होना बड़ा होता है, वो बुद्धि लिप्त नहीं होती, मानो मेरा स्वार्थ है मेरा मतलब है मेरा काम सिद्ध हो जाएगा ये लिप्त होना है, ये हमारा नहीं है कोई लिप्त नहीं कोई स्वार्थ नहीं, बुद्धि ऐसे न लिप्य थे बुद्धि में लिप्त होता ही नहीं कोई स्वार्थ नहीं कोई पक्षपात नहीं कोई विषमता नहीं कोई विचार नहीं, तो बुद्धि लिप्त नहीं हुई, तो अथवा भी से मान लो का ना अंति न निवेदते, जैसे न करो तीन लिपते कहा था अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थोप गौंदे न करो तीर न लिपते शरीरस्थोप गौंदे न करो तो न लिपते क्रिमिनेशन बात बताई। तो जो जो यदा भूत प्रतिभाव एकस्तम अनुपश्यति तथेव से विस्तार ब्रह्म संपदे तरा, ब्रह्म क्यों हो जाता है अनादि है निर्गुण है ये स्वरूप से इस बार ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तो शरीरस्थ हो भी मनुष्य हो तो शरीर में स्थित दिखता है, शरीर में है स्थित जीवन मुक्ति के द्वारा भी क्रिया होती है सब तरह की, तो शरीर में स्थित दिखता है है भी पर सर्वस्थ तो नहीं लिपते। तो न करो तीर न लिपते की व्याख्या की दो श्लोकों में, अगर 32-33 श्लोकों में न करो तीर न लिपते की यथा काश अस्तित्व नित्यम वायु यथा अच्छा था सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते, सर्वगत आकाश है वो सर्वगत है तो वो लिप्त नहीं होता किसी के साथ, आकाश का लिप नहीं होता। तो सर्वगतम सूक्ष्म सूक्ष्म होने के कारण से लिप्तता उसमें निर्लिप रहता है, तो निर्लिप्त रहता है ऐसे निर्लिप्त रहे शरीर में रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए ऐसे लिप्त रहे आकाश में स्थित रहता है सर्वगतम सूक्ष्म आकाश हम नोपलिप्यते शरीर स्थोप गांते न करोति न लिप्यते। ओ ये था यथा प्रकाश्यति एकः कृत्सिंह लोक में मम रवि, जैसे सूर्य है तो सबको प्रकाशित करता है प्रकाश अधिक ज्ञान देता है जिस प्रकाश में सब क्रियाएं होती है कृत्रिम लोक में मम रवि ऐसे क्षेत्रम क्षेत्री तथा प्रकाशयति सर्व क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो प्रकाशित करना और लिप्त न रहना, तो क्रिया करना और प्रकाश करना दो बात हुई। तो पूरे 30वें श्लोक ने करोति न करोति न लिप्यते बताया, तो न करोति में दृष्टांत दिया सूरज का और न लिप्यते में दृष्टांत दिया आकाश का, ये दोनों विषय खोला आपसे। तो प्रकाश सूरज करता है परंतु प्रकाश दंड का भागी सूरज नहीं होता। एक वेद का पाठ करता है तो वेद का पाठ सूर्य के प्रकाश में करता है, और एक शिकार खेलता है वो सूर्य के प्रकाश में ही हरिण को मार रहा है। तो प्रकाश के बिना न तो वेद पाठ होता न हरिण मार जाता, प्रकाश तो साथ है प्रकाश के बिना होता नहीं। परंतु क्या सूर्य को पुण्य होगा वेद पाठ करने से और क्या हरिण के मारने से पाप लग जाएगा? क्यों नहीं लगता? वो तो प्रकाश से करता है केवल ही, तो केवल प्रकाशित मात्र करने से वो बद्धता नहीं है। ऐसे लिप्त है क्या है प्रकाशित करना का अभाव हुआ, ये सिद्धांकृत भाव जिसके अहंकृत भाव नहीं है। सूर्य ऐसा अहंकार नहीं करता कि इसको मैं वेद पढ़ा दूं, इसको वेद पढ़ा दूं वेद की शिक्षा दे दूं और मैं कहता हूं तू वेद पढ़, ऐसा संबंध हो तो बन जाए। तो मैं ऐसा कहता नहीं, लिप्त होता नहीं, करता नहीं मैं। और वो लिप्त होते मैं आकाश जैसे रहता है तो आकाश रहता वो लिप्त नहीं होता। तो इससे न अंकृत भाव बुद्धि ऐसे न लिप्य थे, तो बुद्धि का लिप्त होता है, लिप्त होना पड़ा होता है, वो बुद्धि लिप्त नहीं होती। मानो मेरा स्वार्थ है, मेरा मतलब है, मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, ये लिप्त होना है, ये हमारा नहीं है, कोई लिप्त नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बुद्धि ऐसे न लिप्य थे, बुद्धि में लिप्त होता ही नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई विषमता नहीं, कोई विचार नहीं, तो बुद्धि लिप्त नहीं हुई। तो अथवा भी से मान लो का न अंत न निवेदते, जैसे न करो तीन न लिप्यते कहा था अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थोप गौंदे न करो तीन न लिप्यते। पुरुष प्रकृति भोगते गुणों प्रकृति भोगता है, तो प्रकृति से भोगता है शरीर से भी नहीं भोगती, न करो नहीं लिप्यते। कितनी आश्चर्य की बात है, तो ये प्रकृतिस्थ है, चाहे शरीरस्थ है तो प्रकृतिस्थ है, प्रकृति से तो शरीरस्थ है। परंतु विलक्षणा ये बताई कि जिसके कर्ता पर में लिप्त कर्तृत्व नहीं है और भोगने में लिप्तता नहीं है तो शरीरस्थ हो भी अभी कहता है कि शरीर में स्थित है तो भी न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित होकर कर्ता लिप्त भी नहीं होता। इस वास्ते प्रकृति में स्थित है वो, इस वास्ते पुरुष प्रकृति से ही भोगते। अगर मैं भोगेगा करता है वो भोगता बनता है, जो करता है वही भोगता बनेगा, जो करता नहीं है वो भोगता नहीं बनेगा। तो प्रकृति में शरीर में स्थित होकर करता है वो फंसता है, अहंकृत भाव नहीं है तो फंसता नहीं। जैसे गंगा जी चलती है तो गंगा जी के प्रवाह में कई गायों बह गई, कई ब्राह्मण बह गए, तो गंगा जी को गो हत्या लगेगी, कस्बर में हत्या लगेगी। और कई खेत भी गए जैसे बारह ही महीना अन्न खाते अन्न पैदा हो गया, कुटुम्ब का कुटुम्ब पल गया, कई जल पी लिया तृप्त हो गए और खेती हो गई, बहुत लाभ हो गया, तो उस लाभ का पुण्य थोड़े हो जाएगा गंगा जी को। और गायों बह जाए ब्राह्मण बह जाए तो गो हत्या तो ही लग जाएगी, क्योंकि गंगा जी में अहंकृत भाव है ही नहीं, बुद्धि ले भाई नहीं, तो उसे क्रिया हो जाती लुप्त नहीं होता। ऐसे जिसके अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि की लिप्तता नहीं है, न वो करता है न बंधता है, ऐसे न प्रेत प्रियम प्राप्य नोत प्राप्य चा प्रियम, प्रिय की प्राप्ति होने पर जो हर्षित होता है तो वो बंध जाता है। और जो क्रिया करने में कर्तृत्व में होने से हर्षित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, उद्विजित नहीं होता, तो उद्विग्न नहीं होता तो बंधता नहीं। तो प्रिय प्रिय की प्राप्ति का तात्पर्य है ज्ञान। वहां प्रिय प्रिय में अच्छा लगा, सुंदर लगा, राजी हो गए, ये नहीं, ज्ञान हुआ। अब ज्ञान को त्वचा में ज्ञानी महात्मा के भी गर्मी सर्दी लगती है वैसी, तो सर्दी वर्दी ज्ञान होगा। ज्ञान होने में सर्दी ऋतु में गर्मियां गर्मी अच्छी लगेगी, गर्मी में गर्म वायु बुरी लगेगी, तो ये ज्ञान तो ज्ञानी महात्मा को भी होगा। तो प्रिय प्रिय तो हो गया, अनुकूलता प्रतिकूलता हो गई, पर अनुकूलता को प्राप्त करके न प्रेषित, तो अनुकूलता प्रतिकूलता नाम प्रिय प्रिय है या अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान मात्र। तो शरीर से ही अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, इंद्रिया से भी अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, मन से भी अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, बुद्धि से भी अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, सिद्धांत से भी अनुकूलता प्रतिकूलता होती है। हम अद्वैत सिद्धांत वाले हैं, आपने द्वैत का विवेचन किया, अद्वैत का विवेचन करते अद्वैत का खंडन कर दिया, खंडन कर दिया हमारे बुरा लगा। तो द्वैत को ज्ञान होने पर भी राजी ना जाहिर होता है, भक्ति का प्रश्न किया ज्ञान का खंडन कर दिया तो हम ज्ञान मार्ग में हमारे को बुरा लग गया, हम भक्ति मार्ग में चलने वालों की हमने खंडन कर दिया, ज्ञान बिना भक्ति में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कहते तो बुरा लग गया। तो ये दोनों ही राग द्वेष है, तो सिद्धांत को लेकर राग द्वेष होता है। प्रिया प्रिया तो अपनी उपासना के अनुसार अच्छा लगता है, परंतु उसमें राग नहीं होना चाहिए। और अप्रिय लगता है तो सिद्धांत की दृष्टि से प्रिय अप्रिय दोनों होते हैं, तो प्रिय शरीर को लेकर, इंद्रियों को लेकर, मन को लेकर, बुद्धि को लेकर, सिद्धांत को लेकर प्रिय अप्रिय होता है। तो प्रिय अप्रिय का तो ज्ञान होता है, पर उसमें हर्षित और उद्विग्न होते हैं तो हम फंस जाते हैं। तो ये फंसने की जगह है, जो हर्षित होना उद्विग्न होना ये है फंसने की जगह। तो ये जिसके नहीं होता तो फिर न करो थे न लिपते, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, अनादि है निर्गुण है, गुण क्या है, कारण गुण संगो से सदा सदीव, गुण निर्गुण है, इस बात गुणों का संग नहीं होता, गुणों का संग नहीं होता जन्म कैसे होगा, कारण गुण संगो से सदा सदी जन्म सु, गुणों के संग होने से जन्म होता है, इस बात गुण गति सत्वस्था मध्य तेषंती राधसा अधोगति तामसा, जो गुणों के साथ संग कर लिया वो संग अंत समय में हो जाए तो जिस जिसका स्मरण करता है तो वो अंत काल में अगर सतोगुण में मरता है ऊपर जाता है, रजोगुण मरता मध्य में रहता है, तो वो गुण मरता है तो अधोगति हो जाता है। यदा सत्य प्रवृत्ति तो प्रदेगा, तात्काल की बात बताई, ये वो शरीरस्थ हो भी अठारह बताई, वो स्थित होने की बात बताई, यथा सत्व प्रवृत्ते तो प्रलय तथा उत्तम विधान लोकान अमलान प्रतिपद्यते पढ़ने पर मरता है तो कर्म संग जाए थे तथा पलने स्तमसी मोड़ियों जाए थे। तो ये तात्कालिक संघ का फल स्थित होने का फल तो उनमें स्थित रहे चाहे तात्कालिक गुण बढ़े तो कारण गुण संगो से सदा सदनिशु ऊंच नीच योनि में जन्म होने में कारण गुणों का संग हुआ चाहे गुण में स्थित रहो चाहे तात्कालिक हो जाए उन गुणों का संग नहीं हुआ तुम जन्म मरण कैसे होगा कि अराधिता निर्गुणत्वात वो निर्गुण है गुण रहित है स्वयं निर्गुण है तो निर्गुण स्वयं होने से गुणों का संग नहीं होता नहीं असंग होते न करो तीन लिप्यते गुणों का संग होता करो तीन लिप्यते होगा फल भी उसको भोगना पड़ेगा गुणों के संग से। इस वास्ते गुणा वर्तन्त इत्येव योगतिष्ठि नैंगते गुण वर्तन्त इति गुण वर्त रहा है इतना ही ज्ञान है उसके साथ कोई अपना संबंध नहीं तो क्या हमारा संबंध हुआ हम कोई पक्षपात है ही नहीं हमारे भीतर कोई राग द्वेष है ही नहीं तो हम मुक्त हो जाते हैं वो जीवन मुक्त कहलाते हैं। ऐसी जीवित अवस्था में हो जाए तब वो जीवन मुक्त कहलाता है मन जीते हुए ही मुक्त हो गया किसी अगर राग द्वेष से हर शोक से मुक्त हो गया तो ये छूट गया। और बातें केवल कर लेने हर शोक होता है राग द्वेष होता है तो बातें भले कर लो मुक्त तो नहीं हुआ बंधा रहा। तो दूसरों के समझाते समय तो हम बहुत बढ़िया बात कह देंगे परंतु काम पड़े पर पता लगेगा दशा क्या होती है असली तो चीज वो है जो काम पड़ने पर उपस्थित रहे। मान बड़ाई हमारे को अच्छी लगती है प्रिय लगती है कोई आदर करता तो अच्छा लगता है महिमा गाता तो अच्छा लगता है तो वही फंस जाओगे। इस बात से शास्त्र माया प्रिय स्थान रोच्यति ये प्रिय लगता है ये तो गुरु लाएगा यावंत कुरुते जंतु संबंधान मनस प्रियान मन को प्रिय लगे ऐसे संबंध जोड़ता है मन से तावन तो से निखंडते हृदय शोक शंका उतने ही हृदय में शोक रूपी शंकु मनु कीले गढ़ते हैं। जो जो प्रिय लगता है वो कील गड़ गई कितनी बिल से बात है ये संबंध प्यारा लगे संबंध जोड़ता है अब साधु हो जाए वो भी संबंध जोड़ते हमारे सत्संग ये है पैसे लगते हैं और हमारे सत्संग नहीं करते उतरे अच्छे नहीं लगते ये दूसरों के संग में जाते हमारे सत्संग में नहीं आते। अब जिसको मर्जी है जहाँ लाभ दे वहां जाए तुम बांध लो सो मेरी सत्संग में आवे क्यों भाई तुम्हारे में क्यों दूसरे संग में जाने पंडित जी के उस सत्संग में चले गए और उनसे सुनने लग गए तो हमारे पूरा लगे आदमी अच्छा था परंतु खराब रास्ते पड़ गया खराब हेल्थ कैसे बढ़ गया हमारे को अच्छा नहीं लगता हमारे को हमारे मेहमान को अच्छा लगे तो ये बंधने की जगह है दूसरों को उपदेश दे देते हैं व्याख्यान बता देते हैं अच्छी तरह से समझा देते हैं अलग अलग पूजा करके परंतु हृदय में बात देती है तो हमारे सत्संग ही है उसे राजी होते हैं हमारे सत्संग नहीं है हमारे सत्संग करते ही नहीं हमारी बात सुनते ही नहीं हम कहते हैं हम बहुत बढ़िया बात कहते हैं सुन लो बढ़िया बात तुम कहते हो पर सुनने को अगर बढ़िया लगे तो सुनेगा बढ़िया नहीं लगे कैसे सुनेगा अगर तुम बढ़िया लगे तो बढ़िया ही बढ़िया होती है तुम्हारी घटिया होती ही नहीं या दूसरा घटिया ही घटिया होती है बढ़िया होती ही नहीं क्योंकि कायदा है क्या या दूसरा कहते हो बढ़िया है ही नहीं घटिया ही घटिया है अगर हम कहते चाहे कुछ भी कहें बढ़िया ही बढ़िया है ये तो पक्षपात है पक्षपात क्या है यही तो विषमता है ये राग द्वेष है ये अग्रशोक है ऐसे जो हम करते हैं तो इसमें हम फंस जाते हैं राजी हो जाते हैं नाराज हो जाते हैं वो राजी नाराज होना नहीं होना चाहिए और प्रिय अप्रिय अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान होना चाहिए ज्ञान होने मात्र से बंधन नहीं है। तो इन दोनों का अर्थ करने में मेरी बड़ी झंझट पड़ी है मेरे को जोर पड़ा है इसमें तो अब विवेचन करने में तो आप प्रश्न करो तो उत्तर दे देंगे बढ़िया उत्तम अच्छा ज्ञान दे देंगे परंतु काम पड़ता है तब पता लगता है महाराज रंग बदल जाता है कोई आदर करे तो और तो ही हो जाते खुशी आ जाती है बीच में। आपने देखा है ना बिल्ली लड़ती है ना लड़ती हुई बिल्ली को देखा है कि नहीं? बिल्ली आपस में लड़ती है तो उसका पूंछ नहीं हो जाता है, बड़ा फूल जाता है पूंछ, और तो पूंछ रहता है सीधा, पर लड़े उसे मतलब फूल जाता है, तो वो लड़े होते फूल जाते, ऐसे हमारे अनुकूलता प्रकृति भीतर में फूल जाते, नाराज होते, ये गलती होती है, प्रिय प्रिय ज्ञान में गलती नहीं होती, फूल जाते राजी हो जाते, तुमने अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है, अच्छा आदमी क्यों नहीं अच्छा, हमारी प्रशंसा नहीं करी, अब तुम्हारी प्रशंसा करो वो तो अच्छे है, बुरे सब बुरे है, ये कायदा है क्या? अब उनको अच्छा लगे वो अच्छी कहते हैं, उनको बुरा लगे बुरा कहते हैं, हम भी तो हमारे को अच्छा लगे अच्छा कहते हैं, बुरा लगे बुरा कहते हैं, तो ये अधिकार हमारे को आपको नहीं है क्या? सबको अधिकार है, अपने को जो अच्छा लगे अच्छा ही लगेगा, बुरा लगे बुरा ही लगेगा, तो ये अच्छा और बुरा लगना है, ये प्रिय प्रिय नहीं है, प्रिय प्रिय तो उनका ज्ञान होता है, ये प्रिय प्रिय ज्ञान तक ही, तब तो कोई दोष नहीं है, और ज्ञान से अगर ही जाकर के लिप्तता होती है तो वहाँ बन जाते हैं, इस वैसे नहंकृत भाव बुद्धि यश्य न लिप्यते, जिसके अहंकृत भाव नहीं बुद्धि लिप्त नहीं होती, तो सबको मार दो न मारता है न लिप्त होता है, हम कहते हैं संतों ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान भी स्वार्थी है, आप स्वार्थ राम जी शिवरे जाने त्यारे बिंद सेवा काल हो गए नरक में डारे, बोलो आप स्वार्थी राम जी शिवरे जाने त्यारे नरकों में डाले, तो स्वार्थी भगवान ही भी है, भगवान स्वार्थी नहीं है, उनके कर्मों के अनुसार देते हैं भगवान अपनी तरफ से, स्वार्थ क्या ऐसा भद्रे वाले कौन से भगवान को पुष्टि कर देंगे, नहीं भद्रे वाले कौन से भगवान के किस कर देते हैं, उनके कर्मों के अनुसार उनकी व्यवस्था करे, परंतु उस समझने वाले कहते हैं ये पक्षपात किया, ये भगवान ने पक्षपात कर लिया, भगवान के पक्षपात नहीं है, समोह स्वरूप होते न मैं द्वेषी होते न प्रिय, साफ कहते हैं न मैं द्वेषी है न प्रिय है, तो न प्रिय प्रेम प्राप्य नो द्वेत द्वेष प्रेम प्राप्य, तो न द्वेषी से न प्रिय, ये भजन दे मां भक्ति मई देते, अब मेरा भक्ति में करते मैं उनमें वो मेरे में है, क्यों भक्ति करते हैं, तो ये दोष हुआ गुण हुआ तो भक्ति करने वालों का हुआ, हमारा थोड़ी होगा, ये समान कपड़ा है, योग अब ये कपड़ा इधर उलट गया तो योग दुगुना हो गया, कपड़े ने पक्षपात किया, अरे पक्षपात किया ये दुगुना गया दुगुना हो गया, ऐसे भगवान के अनुकूल किया तो दुगुना हो गया, भगवान उसके प्रेम करते हैं, ऐसे वृद्ध हो गया तो अकेला हो गया, नहीं हुआ ये, तो इसमें राग द्वेष क्या हुआ, ये यथामाम प्रबंधनते तात्पर्य भजा में हम, अब भजने वालों को नहीं भजे तो गलती हो जाती है, गुड़ खड़े एकड़ भाव भूषण ब्यौरा नहीं नगरी में नहीं आओ रोई भले रे राजिया न्याय नहीं है वहां पर, तो न्याय ठीक होते हुए भी अपना पक्षपात न हो, अपने कोई विचार नहीं है, तो ये ऐसा तो बिल्कुल पक्षपात नहीं करिए तो अन्याय हो जाएगा, इस वास्ते जो भजन करे उनका भजन करना न्याय है, या नहीं भजन करते नहीं करे न्याय है, उसका फल भगवते न्याय है, तो ये कोई पाप थोड़ा ही है, एक कहानी याद आगे बता दें, एक शहर में गए गुरु चेला दोनों बड़े अच्छे संत थे महात्मा जी, उनके चेला साथ में था, एक गांव में गए तो वहां पर महाराज अबू रघुवीर अबू जराजा टकमण भाजी टकमण खाजा, टकमण साग ले लो टकमण खाजा ले लो मिठाई लो टकमण मिलती है, तो कहते यहाँ बड़ा अच्छा है भाई, ये देश तो बड़ा अच्छा है, माल मिलता है गोप मोर मोर तुम्हें, गुरु जी ने कहा रहे ये अच्छा नहीं है, यहाँ कोई न्याय ही नहीं है, टकमण भाजी साग भाजी टकमण और खजार लड्डू भी एक टकमण ठीक नहीं है महाराज, ये अच्छा है, तो भाई ये ठीक नहीं है, तो महाराज मैं तो कुछ दिन आप आज्ञा हो रह जाऊ, महाराज ने कहा ये ठीक नहीं रह जा, मर जाओ कोई बात नहीं रह जा, परंतु जब आप होता तो मेरे को याद कर लेना, जो दुख लगे तो मेरे को याद कर लेना, ठीक है महाराज, वहां रह गया खूब मौज से रहने लगा, तो एक उसमें घटना घटी शहर में घटना घटी, रात्रि के समय पीछे से दीवार तोड़ करके और चोर पीछे दसने लगे तो दीवार गिर गई, आदमी चारों मर गए, शिकायत उठा गई, अमुक आदमी के अमुक सेठ के दीवार से चार आदमी मर गए। अब सेठ को पकड़ा कि तेरी हत्या करी तेने तो चार आदमी मर गए, अब हम तुम्हारे कैद करेंगे तो फांसी देंगे, चार आदमी हत्या कर दी। उसने कहा साहब मेरा दोष नहीं है इसमें, भीत मैंने थोड़ी बनाई, मैंने तो पैसे दिए है, भेंट तो अमुक आदमी ने बनाई। कब सुनो उसको बुलाया कि तुम्हारे को फांसी देंगे। क्यों? आदमी चार मर गए, अब तुम्हारे को फांसी देंगे, आदमी चार सी टाइम दीवार क्यों बनाई। वो कह साहब मेरा दोष नहीं है इसमें। दोष किसका है? दोष का वो चिड़ने वाला कहता है मेरे को तो जैसा गारा दिया, जैसे ईंट दी पत्थर दिया मैंने चिड़ दिया, अब गारा गीला हो गया उसी कसी होगी मैं क्या करूँ। तो घिया बनाना बोला, आधा बनाने वाला है उसको बुलाओ। उसको बुलाया कि तेने ये गारा गीला क्यों कर दिया, गीला गारा कर दिया, कचीरे की भेंट आदि मर गए चार, तुम्हारी फांसी दी जाएगी। वो जैसा मेरा दोष नहीं है इसमें, गारा गीला हो गया मैं क्या करूं, पखार ला करके जल डालने वाले ने पानी अधिक डाल दिया इस वजह से गीला हो गया, तो मेरा इसमें क्या दोष बताओ। मेरे जैसा हो गया मैंने जाल दे दिया, उसने भेंट बन गई, तो मेरा दोष नहीं है। तो ना उसको बुलाओ, वो पानी लाने वाला कौन है? उसको बुलाया, हाजिर हुआ, कहते तेने पानी ज्यादा क्यों डाल दिया, तेरे पानी डाला इसे आदमी चार मर गए, अब तुम्हारे को फांसी देंगे। तो आदमी मर गए चार दीवार से, गिर गिर के दीवार मर गए। वो कर साहब मेरा इसमें दोष नहीं है। तो दोष किसका है? कि महाराज एक बाबा जी रहते हैं, उनके यहाँ स्त्रियों जा रही थी, तो स्त्रियों जा रही आ रही तो मैं स्त्रियों की देखने लग गया, देखने लग गया, मुंह खुली रह गई, पानी ज्यादा गिर गया, मैं क्या करूँ, मेरा दोष नहीं। कि पकड़ो उन स्त्रियों को, जाए तो दीवार नहीं कच्ची, आदमी चार मर गए, स्त्रियों को पकड़ा, कहो तुम क्यों गई, उस समय क्यों गई, वहाँ कहाँ गई थी? कहता मैं तो भाई संतों के पास गई थी सत्संग करने के लिए, उसे जा रही थी। तुम हम तो संतों के पास गई, तो बुलाओ ईश्वर को भी, संतों को बुलाया कि महाराज आप गए कर दिया चार आदमी मर गए, तो दोष आपको लगेगा, क्योंकि आपके दर्शनों के लिए स्त्रियों गई, स्त्रियों के देखने से पानी ज्यादा गया, पानी ज्यादा गिर से कादा हो गया, उसकी ये दशा हो गई, आदमी चार मर गए, ये हत्या तुम्हारा होगी। बाबा जी बताओ, बाबा जी उसको बताओ, वो अगर कुछ बता रही ये तो आए तो मेरे पास ही, तो तुम्हारे को फांसी दी जाएगी, आदमी चार मर गए हत्या होगी, तुम्हारे को फांसी दी जाएगी। अब पकड़ लिया था, तब उसने गुरु जी को किया याद कि महाराज आप बता गए हमारे, तो मैं तो कह भाई ऐसा राज में मत रहो, राज तो टक्के मुड़ी बाजी से कमर खा जाए, ऐसा राज में ठीक नहीं। तो महाराज अब क्या करूं, मजा ले क्या क्या करेंगे, हो जाएगा ठीक हो जाएगा, पर तू सुन ले ये बड़ी मौज हो रही है, आप मौज थोड़े दिन नहीं ठीक नहीं है, आप मौज अब सर फांसी का हुक्म हुआ, फांसी का हुक्म हुआ तो फांसी देने के लिए दोनों फांसी का टाइम हुआ, समय पर दोनों हाजिर हो गए गुरु चेला। तो चेला तो कहा कि मैं फांसी दूंगा, गुरु जी कहे मैं चढ़ूंगा फांसी, तो मैं चढ़ूंगा। तो चेला का अपराध चेला का आपको कि मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, चेला है तू, फांसी तू पर देगा मैं चढ़ूंगा, तेरा लगता है मेरा लगता है बड़ा, मैं गुरु हूँ तेरा, मैं चढ़ूंगा पहले। कि महाराज आप कैसे चढ़ोगे, ये तो कहा मेरा है फांसी का हुक्म, आपको है ही नहीं, नहीं मैं चढ़ूंगा। वो कहते मैं चढ़ूंगा, राजा को जाकर के महाराज चेला गुरु डर रहे दोनों, तो वो कहते फांसी मैं चढ़ूंगा, वो कहते मैं चढ़ूंगा। राजा आए, अरे क्या बात है कि महाराज ये फांसी चढ़ने से मुक्ति हो जाए, मैं चढ़ूंगा। वो कहते मैं चढ़ूंगा, तो अठो तुम चेलार गुरु कहीं गए फांसी मेरी, मैं फांसी का मैं चढ़ूंगा, तुम चढ़ने वाले कौन फांसी में? गुरु जी का चलो ये न्याय है, ये इंसाफ है, चार आदमी मर गए उसके पाप लग, ऐसा न्याय नहीं है वहां तो राज नहीं कुछ पोपम भाई को, तब इस थोड़े होगा है। अब सखीश का दोष बढ़ाओ, अंत में दोष बाबा जी का निकला, जैसे चार आदमी मर गए। अब ये बात नहीं कि चोरी करने को गए भीत तोड़ी इनको दोष दिया जाए, दोष क्या था मर गए वो, तो तब मर गए पाप लगेगा शेठ को, शेठ को पकड़ा तेरे सीधी बात खूब पढ़ाई बता, जैसे आदमी मर जाए तो ये न्याय होगा साहब, ये न्याय नहीं है, वहां तो ठीक तरह काम करे कुछ भी है, तो आजकल लगाते ऐसे ही अन्याय आजकल के अन्याय ऐसा ऐसा अन्याय होता है, बोला उसे गवाही लाओ, गवाही कर दिया, गवाही सिद्ध हो गया, हो गया। अरे सत्ता ही क्या है, कौन दोष का भागी है, कौन पुण्य का पाप का भागी है, तो ऐसी बात नहीं है। न प्रेषित प्रेम प्राप्य अभिभाषण प्राप्त, प्रिय को प्राप्त हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त उद्गल नहीं होता तब ठीक है। फिर तो अभी से मान लो का न हंते ना निबद्धते, बनता ही नहीं, सब काम करता हो ही नहीं बनता। तो ये बताया कि इनकी परीक्षा कैसे हो, ये मूल में प्रश्न था कि मेरे तो गुरुदेव के पास दूसरा न कोई, इसमें वास्तविकता की पहचान कैसे हो बताओ। तो पहचान ये राजी नाराज होना ये है पहचान। हम अनुकूलता में राजी होते हैं और प्रकृति में नाराज होते हैं, तो दूसरा न कोई ये नहीं हुआ। हम संसार की अनुकूल दोनों में नाराजी नाराजी कुछ नहीं होते, ये तो होता रहता है। अब मरता है जन्मता है, मरने में जन्मने में कोई फर्क नहीं, अनुकूलता प्रति में फर्क नहीं, आदर निरादर में कोई फर्क नहीं, निंदा प्रश्न से कोई फर्क नहीं, जब फर्क नहीं हुआ तब ठीक है, इसका नाम समता। नहीं तो गैर विद्या भी नहीं संपन्न है, ब्राह्मण है गृहस्थ नहीं, सुनती है वो सौभाग्य से पंडित समदर्शी न, तो समदर्शी क्या है, चाहे चंदार हो चाहे ब्राह्मण हो, सुनी चाहिए वो सौभाग्य सर, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है और स्वपा के पंडित समदर्शन बरोबर बर्ताव करो, उनके साथ ब्याह कर लो, उनके साथ रहो, क्योंकि समदर्शी हमें। तो समदर्शी तो कुत्ता होता है ऐसा, जो कुत्ता कुत्ता के रसोई में जावे तो उसमें ऐसा ही है, और ब्राह्मण की रसोई में जावे तो पैर धोकर जाता है कुत्ता, कि ब्राह्मण की रसोई है पैर धोकर जाओ भाई ऐसे कर जाते हो, वो समदर्शी है, ये समदर्शी है कुत्ता है, संवर्ती है, संवर्ती है महाराज जमराज, ऐसे संवर्ता होगा उसका नाम जमराज होगा, संवर्ती परिवर्तराज, जमराज का नाम है संवर्ती, चाहे साधु हो चाहे ब्राह्मण हो, गुना किया उसके अनुसार दंड होगा उसको, तो संवर्ती है वो, तो संवर्ताव करना है कि समदर्शी ने है, ज्ञान समता होना चाहिए, हर शोक नहीं होना चाहिए, ऐसे वो पाव पाव गेहूं दे दो, सर काम करने वाले बैठे गद्दों पर बैठे उन दो पाव पाव गहूं, तो पाव पाव गहूं कैसे चलेगा, ये तो खा ही नहीं सकेगा, एक अशेर तीन पाव खाने वाला पाव कैसे काम चलाएगा, कर समान कर दो सबको, इतनी देर समान कर दो, ये समान नहीं है भाई, समान है भोजन कराओ भर पेट खिला दो समान हो गया, क्षमता हो जाएगी, पर आजकल की क्षमता है ये, बस ये काम कर दो क्षमता हो गया, समदर्शन है समदर्शन है, चाहे वोट दे दो गांधी जी और काहे भेड़ चराने वाला बरोबर है, एक वोट तो गांधी जी का एक वोट भेड़ चराने वाले का, अब बोलो क्योंकि सम्मति दे दी ना, सम्मति हो गई, अब सम्मति ज्यादा भाई हो चीज जीत गया, तो ज्यादा सदा मूर्खों की होती है सदा ही, शत्रुयुग हो त्रेता हो द्वापर हो कलयुग हो कोई युग हो कैसा ही हो, ज्यादा मास्टर अधिक होते हैं विद्यार्थी अधिक होते हैं, मकान बनाने में मजदूरे ज्यादा होते हैं, ऊपर के जो मिस्त्री होते हैं वो अधिक होते हैं, तो ये अधिक होते हैं, अब दूसरा यहाँ पर तो बड़ी मौज है बड़ा आनंद है, वो पंडित में कह दिया चले जाएगी महाराज बड़ी टके मन टके मन कहा जा, बढ़िया ही बात है, कैसी बढ़िया नगरी है, कैसा आनंद आता है इसमें, आनंद होता है देखना तमाशा आगे हो जिसका, तो ये समदर्शी है, समदर्शी बड़ा नहीं है, ये तो संवर्ताव है, वो कर भी सकते आप, विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मण है गऊ, ब्राह्मण गऊ में समान बर्ताव कर लोगे, हाथी में और कुत्ते में समान बर्ताव कर लोगे, हाथी पर चढ़ो कुत्ते पर भी चढ़ जाओ, कुत्ते उदूत करो हाथी उदूत कर दो, ये कैसे होगा समवर्ती नहीं, जिनमें समता का बर्ताव कोई कर सकता नहीं अरे करना चाहिए नहीं, ऐसे दृष्टांत लाकर दिए हैं, तब इसको आदर्श मानते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है गवी हस्तिनी सुनिचेवर स्वभाग्य पंडित समदर्शी न, सबके साथ समान बर्ताव हो, सबके साथ खाओ पियो, सबके साथ ब्याह करो, किसी वर्ण का कोई और किसी कोई हो उसके साथ करो, ये महाराज समबर्ताव, तो ये प्रकृति में समता होने से प्रलय होता है और परमात्मा के स्वरूप से समता होने से कल्याण होता है, तो बाहर की क्षमता करो तो प्रलय हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा, सब मर जाओगे, और परमात्मा के स्वरूप क्षमता हो जाए तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, बस क्षमता यही अर्थ है, सबके साथ खाओ पियो, सबकी रोटी बेटी का सर एक बर्ताव करो, ये क्षमता हो गई, ये क्षमता हो गई, कुत्ता बनाया गया, कसूर बनाया गया, क्षमता हुई है। ये आज तो प्रश्न सुनी है, तो ये न्याय हुआ, राजा ने किया न्याय ना, आदमी चार मर गए उसका न्याय हुआ ही, तो समदर्शन है सब। तो क्या उसकी पहचान, पहचान ये समय में ना दुख हो ना सुख हो, प्रिय की प्राप्ति हो जाए तो सुखी हो, मौज होगी, सार दुख दुख हो गया तेरे में दुख।
जन प्रम सदय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27/10/93 दोपहर 3 बजे वृंदावन में हुआ।
सुख हर से जड़ दुख बिलखाई, दो सम धीर धरे मन माई, सुख हर से जड़, जो सुख में हर्ष होता है वो जड़ होता है, मूर्ख होता है, लंत होता है, अज्ञानी होता है, दुख में बिल जाए वो तो ज्ञानी होता है, दो सम धीर धरे, दोनों समान से धीरे मस्त है अपने।